और चैतन्य चरितमृता के आदि लीला के 13 चैप्टर पे के ऑलमोस्ट आखिरी श्लोक में कृष्णा कर स्वामी लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के जन्म लीला के बारे में पढ़ेगा और सुनेगा उसको भगवान कृष्ण की जरूर कृपा मिलेगी, मतलब ब्लेसिंग्स है चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। इसलिए हम लोग महाप्रभु के जन्म के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आज और उसके बारे में सुनना चाहते हैं। लेट्स क्लोज दैट गेट। ओके, सो चैतन्य चरितमृता के 13 चैप्टर के आखिरी श्लोक में आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो महाप्रभु के पास्ट टाइम्स स्पेशली जन्म के बारे में सुनता है उसको जरूर कृष्ण भगवान की कृपा मिलती है। सो इसलिए आज के दिन महाप्रभु के पास्ट टाइम्स के बारे में सुनना चाहिए, स्पेशली उनके जन्म लीला। और हम तो नवद्वीप में ही बैठे हैं। सो चैतन्य कृष्णा गोस्वामी स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जो महाप्रभु के जन्म लीला के बारे में सुनेगा, बोलेगा या उनके जन्म दिवस को अटेंड करेगा उसको उनकी स्पेशल कृपा मिलेगी। सो महाप्रभु कौन थे? वेल, अगर आपको महाप्रभु को जानना है कौन थे तो उसके लिए चैतन्य चरितमृता बेस्ट बुक है। और चैतन्य चरितमृता 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम सबको पता है। कृष्णा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। आदि लीला में कितने चैप्टर्स हैं किसी को पता है? ये थोड़ा ध्यान नहीं होगा। आदि लीला में 17 चैप्टर्स हैं टोटल, और मध्य लीला में 25 चैप्टर्स हैं, और अंत लीला थर्ड पार्ट में 20 चैप्टर्स हैं। और जो आदि लीला है उसके जो फर्स्ट 12 चैप्टर हैं उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ऑथर हैं इस किताब के, वो जनरल महाप्रभु के भक्तों के बारे में बता रहे हैं, महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। और 13, 14, 15, 16, 17 चैप्टर्स में फिर चैतन्य महाप्रभु के बाल्य चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स के बारे में बता रहे हैं, बचपन में कैसे थे, क्या करते थे, कितने नॉटी थे, और वो सारी डिटेल्स है। और मध्य लीला में महाप्रभु के गृहस्थ जीवन के बारे में बताया है, ही वॉज अ हाउस होल्डर। और फिर अंत्य लीला में उनके ऑलमोस्ट उनके सन्यास और जगन्नाथपुरी में जो पास्ट टाइम्स कर रहे हैं। सो बट अभी हम कंसर्न्ड है उनके जन्म लीला के पे, वो हम कंसर्न्ड है। तो महाप्रभु कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंडफादर का नाम तो उपेंद्र मिश्रा, ये 13 चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है। और वो वहां पे बांग्लादेश में रहते थे। तो उपेंद्र मिश्रा के के 7 बच्चे थे और उसमें से जो 5th चाइल्ड थे उनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो जगन्नाथ मिश्रा फिर उसके बाद पहले वो बांग्लादेश को पता है ना, पहले बांग्लादेश बंगाल को ही पार्ट था, वो तो पाकिस्तान के डिवाइड होने के बाद हुआ है। तो बांग्लादेश को बोलते थे राड़ देश, जो बंगाल का जो पार्ट है ना बांग्लादेश पार्ट उसको राड़ देश बोलते हैं। या जो बंगाल का जो बंगाल पता है ना आप लोगों को, बंगाल का कुछ आइडिया है? या बंगाल का जो पार्ट झारखंड के पास है उस तरफ, उसको भी राड़ देश बोला जाता है क्योंकि वहां पे गंगा जी नहीं है, गंगा जी तो यहाँ पे बहती है बस नवद्वीप के आसपास ही। तो वो वहां पे रहते थे बांग्लादेश में, राड़ देश में। वहां से जगन्नाथ मिश्रा, उन्होंने सोचा चलो मैं नवद्वीप जाऊंगा, नवद्वीप शिफ्ट हो गए वहां से आकर। जगन्नाथ मिश्रा जो है 5th सन उनके। और क्यों आए नवद्वीप? क्योंकि उस टाइम नवद्वीप में बहुत ज्यादा एजुकेशन हब था, ऐसा डिस्क्राइब है। 500 साल पहले मेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी पढ़ाई की, जैसे दिल्ली में यूनिवर्सिटीज हैं सब पढ़ने वहाँ पे जाते हैं, ऐसे सब पढ़ाई करने नवद्वीप में आते थे। और नवद्वीप में ब्राह्मण बहुत थे, न्याय थे, पंडित थे, स्कॉलर्स थे। पूजा करना सीखना है तो नवद्वीप आना है आपको, आपको प्रोफेशन करना है स्टडी का तो नवद्वीप आना है, आपको टीचर बनना है तो नवद्वीप आना पड़ेगा। नवद्वीप में बहुत ज़्यादा हसल बसल थी। तो उपेंद्र मिश्रा, जो जगन्नाथ मिश्रा, ने सोचा चलो नवद्वीप जाऊंगा, मैं पढ़ाई भी कर लूंगा, जैसे सोचते हैं यूथ्स, नहीं पढ़ाई भी कर लेंगे, लाइफ भी सेटल हो जाएगी। तो वो लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। किसी को पता है कौन थे वो?
महाप्रभु के
हाँ नाना ही हो गए ना, हाँ नाना ही हो गए। तो नीलांबर चक्रवर्ती वहां पे रहते थे, कहाँ रहते थे किसी को पता है? हम गए थे, कहाँ रहते थे? हम गए उनके घर, गए हम लोग अनुत्तम ऋषिकेश। तो चैतन्य महाप्रभु के जो नीलांबर चक्रवर्ती जो थे वो तो एक जगह है वामन पुकूर। तो ये जो जगह है आपके गदाधर पंडित की, क्या है गदाधर दास की जगह, कौन सी जगह थी? नहीं, गदाधर दास की कौन सी जगह थी?
तो
चांपाहाटी। अगर आप चांपाहाटी जाओगे ना, ऐसे पास में है, वेरी नाइस प्लेस। तो उसके पास एक गांव है वामन पुकूर, वहां पर नीलांबर चक्रवर्ती का घर था, स्कूल था, तो वहां पे रहते थे। सो जब जगन्नाथ मिश्रा यहाँ पर आए, तो जगन्नाथ मिश्रा यहाँ पर आए तो ही वॉज अ गुड बॉय, एजुकेटेड। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने देखा कि बहुत अच्छे बेटे, तो उनकी बेटी जो थी सची देवी, उनसे उन्होंने प्रपोज किया और उनका विवाह हो गया जगन्नाथ मिश्रा का और सची देवी का। और वो लोग फिर यहाँ पर रहने लगे नवदीप में, उनका घर भी है, हम कल देखने जाएंगे सुबह सुबह जहाँ पे वो रहते थे योगपीठ पे। तो नीलांबर चक्रवर्ती तो उनके नाना हो गए, नहीं बेसिकली मतलब के फादर इन लॉ हो गए एक्चुअली जगन्नाथ मिश्रा के। सो वो लोग जगन्नाथ मिश्रा सची माँ दोनों ब्राह्मण थे, ब्राह्मण फैमिली से थे और अपनी पूजा करते थे जो रेगुलर पूजा चलती है। सो मगर प्रॉब्लम थी, एक प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों के जो पुत्र हो रहे थे, एक्चुअली पुत्र नहीं हो रहा था, पुत्री हो रही थी, और जो हो रही थी वो होते ही मर जाते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा सची माँ के 8 पुत्रियाँ हुई, 8 पुत्रियाँ, और जन्म लेते ही मर गई सब। तो बहुत दुखी थे वो लोग और बड़े ओल्ड भी हो गए थे, सोचा अब क्या होगा कैसे होगा। तो 9वां पुत्र हुआ उनका और उनका नाम था विश्वरूप। कृष्णा कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं, और वो किसके अवतार थे? विश्वरूप, विश्वरूप बलराम जी के अवतार है विश्वरूप, इसलिए उनका नाम विश्वरूप था। पूरा विश्व लेके सची माँ के घर में प्रकट हुए थे वो, क्योंकि इसके बाद कौन आने वाला है? इसके बाद चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं। सो बलराम जी वहां अवतरित हुए और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने, कृष्ण भगवान ने पहले ही अपने बहुत सारे अनुयायी भेज दिए थे यहाँ पर। तो जैसे जब भगवान ने लीला की कृष्ण भगवान ने, तो अपने से पहले यशोदा मानंद बाबा सबको भेजा ना। तो यहाँ पर एक्चुअली पहले विश्वरूप उनके बड़े भाई आ गए और पास में एक जगह शांतिपुर, तो वहां पर अद्वैत आचार्य वो प्रकट हो गए। हरिदास ठाकुर शांतिपुर के पास एक जगह है, कौन सी जगह है जो पे हम गए थे? What's that place called? जरा मेमोरी कम चल रही है मेरी। फुलिया गांव, अब तो बांग्लादेश में आता है बट उस टाइम वेस्ट बंगाल में था, अभी भी है। तो फुलिया गांव में रहते थे पास में। तो हरिदास ठाकुर आ गए थे, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को कि आप ब्रह्मा जी को, कि आप हरिदास ठाकुर का जन्म लेकर वहाँ आ गए। अद्वैत आचार्य महाविष्णु का अवतार, वो भी आ गए। और फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु एकाचक्र ग्राम में, वो भी अवतार लेके आ गए थे पहले ही। और फिर उसके बाद मुरारी गुप्त, मुकुंद, चंद्रशेखर आचार्य और उसके बाद बहुत सारे डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज जो महाप्रभु से पहले ही सब तीर्थ गए, सबके सब सीन बना रहे थे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का। तो महाप्रभु के ये जब विश्वरूप हुए, तो महाप्रभु के आने से पहले अभी महाप्रभु का जन्म नहीं हुआ, तो अद्वैत आचार्य और सबसे पहले जितने भी डिवोटीज जहाँ पे रहते थे, श्रीवास ठाकुर, उनकी वाइफ मालिनी देवी, हम कल जाएंगे, चंद्रशेखर आचार्य, सबके सब अद्वैत आचार्य के घर जाते थे, यहाँ पे रहते थे और यहाँ से शांतिपुर जाते थे। शांतिपुर ज़्यादा दूर नहीं, अगर बोट से आओगे तो पास पड़ेगा, तो वहाँ पे आते थे और वहाँ पे अद्वैत आचार्य उनको सिखाते थे। उनको पूरे नवदीप में उस टाइम सब लोग देवी के भक्त थे, वैष्णविज्म नहीं था, कृष्ण के भक्त कोई नहीं था, या तो चंडी के भक्त, अभी भी आप देखोगे देवी का तो बहुत उपासना चलती है, या योगी थे, ज्ञानी थे, कृष्ण का नाम तो कोई लेता ही नहीं था। सिर्फ अद्वैत आचार्य वहां पे अपने शांतिपुर में बैठ के प्रीचिंग करते थे। और क्या प्रीचिंग करते थे? कि केवल कृष्ण का नाम लो, भक्ति सर्वोत्तम है, ज्ञान, योग, तप, देवी देवताओं की उपासना बिल्कुल बेकार है, भक्ति की स्थापना कर रहे थे, सारे डिवोटी जाके वहां पे सुनते थे, मगर एक सबको बहुत दुख था, दुख इस बात का था कि कोई सुनता ही नहीं था उनकी, मतलब अद्वैताचार्य की भी नहीं सुनते थे। मगर एक्चुअली भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं पॉपर्ट में कि अद्वैताचार्य खुद से पूरी दुनिया को भक्त बना सकते हैं, विष्णु के अवतार है, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्यों नहीं किया, किसी को पता है क्यों नहीं किया? गुड गुड, क्योंकि वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु आके भगवान के हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करें, वो खुद से हरिनाम कीर्तन संकीर्तन का क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे। अगर वो करते थे तो उनको उनको क्रेडिट मिलता ना, संकीर्तन के पिता, फिर किसको कहते हम? अद्वैताचार्य को। संकीर्तन के पिता कौन है? चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने प्रमोट किया। सो अद्वैताचार्य ने एक हम्बल रोल लिया, उन्होंने कहा भी मैं नहीं करूँगा, बट उनको इस बात का दुख था कि कैसे लोग सुनेंगे। अद्वैताचार्य अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बेसिकली, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम महाप्रभु के असिस्टेंट हैं, और इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब होती है कि आपका शक्ति भी है तब भी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हम भगवान और भगवान के भक्तों को सुपरसीड, सुपरसीड समझते हैं आप लोग, सुपरसीड क्या कहते हैं उसको, है हाँ उसको, हम उसको लांग नहीं सकते। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, अद्वैताचार्य सिखा रहे हैं हमें, जैसे हम डिवोटीज कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हो सकता है हमारे पास क्वालिटी हो कोई, मगर हमें देखना चाहिए कि हमारी क्वालिटी यूज़ करके अगर हम उन डिवोटीज से ऊपर जा रहे हैं तो वो नहीं करना चाहिए हमें, उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए क्वालिटी को, क्योंकि हम सर्वेंट्स, हम मास्टर नहीं है। ऐसे हनुमान जी रामायण में भी तो होता है, रामायण में आप जाओ आप पढ़ लो तो रामायण, जब जब हनुमान जी का सीता देवी को अशोक वाटिका में, हनुमान ने कहा मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी आप बैठो मेरे पास, आपको क्या, मैं आपको लेके चलाऊंगा, रावण को मार भी दूंगा, सारी लंका खत्म भी कर दूंगा, सब काम खत्म, बस फिनिश हो गया, राम की जरूरत ही नहीं है। तो सीता माँ ने कहा कि जब उन्होंने कहा ना राम की, बोला नहीं राम की जरूरत नहीं है, बट इंटेंशन यही थी कि मैं कर दूंगा, तब सीता देवी ने पहली बार और आखिरी बार हनुमान को कहा कि हनुमान तुम वानर नहीं हो, तुम बंदर हो, और बंदर जैसी बुद्धि है तुम्हारी। एक्चुअली शी क्रिटिसाइज्ड हिम, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तुलसीदास रामायण में है कि क्रिटिसाइज किया है, मुझे नहीं पता उसका, मगर वाल्मीकि रामायण में क्या नाम यूज़ किया है, कपि, कपि बोला है हनुमान जी को कि तुम एक्चुअली क्रिटिसाइज किया कि तुम बंदर हो, बंदर ऐसी बुद्धि है, तुम्हें उछलना कूदना आता है, तुम्हें तुम्हें भक्ति है ही नहीं, शी टोल्ड हनुमान जी। मतलब सीता देवी के लेवल से तो ऑफकोर्स हनुमान जी की भक्ति सीता देवी के सामने क्या है, सीता तो सीता ही है, बट तो उन्होंने कहा कि हनुमान तुम सही नहीं सोच रहे, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम मुझे ले जाओगे लंका जला दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम कर सकते हो, मगर अगर तुमने ऐसा किया तो तुम एक्चुअली अपनी प्रशंसा कर रहे हो और राम भगवान की निंदा कर रहे हो, क्योंकि इतिहास कहेगा हनुमान ने सीता को बचाया है। सीता ने कहा मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इतिहास का कि राम ने सीता को बचाया है, राम ने सीता की रक्षा की, राम ने रावण को मारा है, ये श्रेय उनको मिले। तब हनुमान जी को समझ आया, वेल दैट मेक्स सेंस, यू नो। सो हनुमान जी ने अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं की वहां पर, ही डिडंट यूज, ऑफ कोर्स सीता देवी ने मना कर दिया। सो इससे हमें समझ आता है कि हो सकता है हमारे में कोई गुण हो, हमारे में कोई योग्यता हो, मगर उसको इस्तेमाल करना नहीं करना, वो बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा, कहीं हम वैष्णवों से ऊपर ना चले जाए, अगर ऊपर चले जाएंगे वैष्णव से तो अपराध हो जाएगा, एंड देन हम सर्वेंट नहीं है, हम मास्टर नहीं है, मतलब अच्छे सर्वेंट नहीं बन पाए, मास्टर बन गए। तो अद्वैताचार्य ने यही सोचा कि भी अगर मैंने कर दिया ये सब तो महाप्रभु क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा नो स्टॉप इट। और बल्कि अद्वैताचार्य से पहले अद्वैताचार्य यहाँ पे उन्होंने प्रकट हुए शांतिपुर में आ गए थे, और नित्यानंद प्रभु भी प्रकट हो गए थे एका चक्र ग्राम में, नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु ने भी प्रीचिंग नहीं की, वो भी रुके रहे, जब तक महाप्रभु से मिले नहीं यहाँ पे नवदीप में कोई प्रीचिंग नहीं की, ये ऑल्सो जस्ट डूइंग नथिंग। नित्यानंद प्रभु सिर्फ ट्रैवलिंग कर रहे थे अलग अलग धामों में और वेट कर रहे थे कि कब महाप्रभु आए। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु अकेले ही पूरे बंगाल, पूरे संसार को भक्त बना सकते। इनफैक्ट महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की हेल्प मांगी थी, तो चैतन्य प्रभु ने संन्यास ले लिया, वो चले गए जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य प्रभु ने कहा मतलब तो नित्यानंद ध्रुव को श्रीपाद कहते थे, चैतन्य महाप्रभु रिस्पेक्ट देते थे ना क्योंकि बड़े हैं ना, तो कहते थे श्रीपाद तुम जाओ बंगाल में और प्रचार करो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और वो गृहस्थों को प्रीचिंग नहीं कर सकते ज्यादा। उन्होंने किया मगर वैसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को स्पेशल डिपार्टमेंट दिया था प्रीचिंग का, कि उनको प्रीचिंग करना है गृहस्थों को और रिच गृहस्थों को, और जो बहुत ही अहंकारी लोग हैं उनको प्रीचिंग करनी है। अब किसी सन्यासी की बात तो सुनेंगे नहीं, महापुरुष सन्यासी हैं, सन्यासी को जाएगा अमीरों के पास सुनते गए, वो कहते हैं बकवास भाग जाओ यहाँ से। तो नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम जाओ। नित्यानंद प्रभु बंगाल आए और बंगाल में उन्होंने क्या किया, आते ही पहले तो शादी की, एक नहीं दो, और क्यों की, क्योंकि उनका फोकस था कि महाप्रभु का ऑर्डर है कि मुझे बहुत अमीर लोगों को अहंकारी लोगों को प्रीचिंग करनी है, तो अगर वो ऐसी सन्यासी होते तो सुनता ही नहीं कोई। तो उन्होंने विवाह किया और फिर नित्यानंद प्रभु एक ने बहुत बड़ा महल खरीदा अपने लिए खड़दा में, आप जाके देखो बहुत बड़ा फोर्ट है, उसमें रह रहे थे। और फिर उसके बाद हीरे जवाहरात पहन के, अंगूठी पहन के, डायमंड्स की, उनका टर्बन है उस पर डायमंड लगा हुआ है, वो पहन के प्रीचिंग करने जाते थे। यू कैन इमेजिन, बाकी सारे लोग कहते थे पागल हो गए क्या कर रहे हैं, ये प्रचार है या नहीं है। बट उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े लोग उनसे जुड़ गए, बड़े बड़े डाकू चेंज हो गए, क्योंकि डाकू आते थे लूटने नित्यानंद प्रभु को, हीरे भी रहे ना, रात को आते थे लूटने, लूटने आते थे नित्यानंद प्रभु की कृपा से प्रीचिंग करके सब डिवोटी में आते थे, बहुत सारे डाकू बन गए उनके डिसाइपल्स। और नित्यानंद प्रभु ने अपने डिवोटीज को आदेश दिया था कि तुम स्पेशली डाकुओं को प्रीचिंग करो। तो यहाँ पे शीतल गांव है, हम गए थे शीतल गांव कटवा के पास, तो वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद हैं, तो उनका नाम है धनंजय पंडित, उनको स्पेशली ऑर्डर दिया कि सारे डाकुओं को प्रीचिंग करो। उस टाइम नवदीप में बहुत सारे डाकू थे बंगाल में, मतलब ऐसे वैसे डाकू नहीं थे। अगर आप तारकेश्वर जाओ कलकत्ता के पास, तो वहाँ पे ऐसे डाकू थे कि जो नरबलि देते थे, नरबलि पता है, ऐसे ऐसे लोग थे आदमी को पकड़ के बलि देते थे, चंडी की पूजा करते थे ना काली की, उन सबको प्रीचिंग कर रहे थे। उस टाइम प्रीचिंग बहुत डिफिकल्ट थी, मतलब अब तो हम सोचते हैं कि उस टाइम आसान होगी, 500 साल पहले सब अच्छे लोग थे, अच्छा नहीं था, उल्टा ही था, आप जाओगे प्रीचिंग करने पकड़ के गला काट देंगे, अब तो ऐसा नहीं होता, एटलीस्ट नहीं भगा देते सबसे मैक्सिमम, उस टाइम ऐसा नहीं था, पकड़ के गला काट देते थे, वॉज वेरी डेंजरस, मुस्लिम थे, तांत्रिक थे, बहुत डेंजरस था। सो मैं पॉइंट कृष्णदास गोस्वामी लिख रहे हैं कि इन लोगों ने थोड़ा डाउन प्ले किया महाप्रभु के आने से पहले, डाउन तो डाउन प्ले समझते हो ना, डाउन प्ले मतलब ज्यादा प्रीचिंग महाप्रभु के लिए, मगर ये सेटअप कर रहे थे सीन कि महाप्रभु आए और फिर प्रीचिंग शुरू कर दें, और इसलिए सबके सब डिवोटी साथ में मिलके गीता भागवत डिस्कस करते थे और प्रे कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के लिए कि वो कब आएंगे, कब प्रीचिंग होगा। स्पेशली अद्वैत आचार्य, ये जो गंगा जी नहीं है, गए होंगे आप गंगा जी के पास जाकर, स्पेशली तुलसी और फूल अर्पण करके भगवान कृष्ण को आह्वान कर रहे थे, और हरिदास ठाकुर भी आते थे उनके साथ और दोनों बैठ के कीर्तन करते थे और भगवान कृष्ण को बुलाते थे। सो इसलिए अद्वैत आचार्य का एक और नाम है नाड़ा। नाड़ा पता है, जैसे बंगाल में तो नाड़ा कहते हैं, वैसे हिंदी में कहते हैं नगाड़ा। नगाड़ा पता है ना, नगाड़ा बजाते हैं ऐसे, और हाँ नगाड़ा वो भी होता है, वो ऐसे करने वाला, डिंग 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 करने वाला, हाँ, या वैसे भी होता है जो एक बजाते हैं, पता नहीं इस फोटो में है नहीं है, इस फोटो में है तो सही।
अच्छा, वो गले में टांग के जो बजाते हैं,
नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसे पों पों करते रहते हैं, है ना, इसमें है ना,
ऐसे होता है,
हाँ पता होगा, हाँ वो ऐसे ऐसे करके ऐसे लंबा होता है, हाँ तो वो होता है। तो उनका एक नाम नाड़ा था, नाड़ा क्योंकि क्योंकि उन्होंने भगवान को बुलाया था गोलोक से, उनकी भक्ति से भगवान उतर के आ गए, उसी भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी आना पड़ता है। महाप्रभु ने बोला कि ये जो अद्वैत नाड़ा है, इसी ने मुझे बुलाया गोलोक से नीचे, और जो ये कहेगा मैं वो करूँगा। स्पेशली कितनी शक्ति है भक्ति के अंदर, अद्वैचार्य का नाम एक नाड़ा था। तो वो लोग सब इतना इंटेंसली प्रे कर रहे थे कि महाप्रभु को, कृष्ण को आना पड़ा इस धराधाम पे, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वो। और कब प्रकट हुए? फाल्गुन की पूर्णिमा, यही है, फाल्गुन की पूर्णिमा पर जब जब सिम्हा लग्न होता है, लियो 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 उनकी थी वो, प्रभुपाल देख रहे हैं जोडियक साइन लियो था, लियो मतलब सिम्हा होता है, सिम्हा 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 होता है ना साइन, लग्न होता है लाइन राशि राशि सिंह सिंह राशि सिंह राशि सिंह लग्न में पैदा हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम भी है सिम्हा गुरु, भक्ति चंद को भी कहते थे, तो नवदीप सिम्हा उनका एक नाम है। पूरे नवदीप में वो जाकर कीर्तन करते थे अपनी पार्टी लेकर हर जगह। सो वो उस दिन प्रकट हुए, मगर चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनके मन में दो इच्छाएं थी और दोनों इच्छाएं उन्होंने पूरी की। भगवान की भी इच्छाएं होती है नहीं? सो उनके क्या इच्छाएं थी? एक इच्छा ये थी उनकी कि खुद प्रेम भक्ति का आस्वादन करें। कृष्णदास स्वामी ये लिख रहे हैं, प्रेम नाम प्रेम अमृत और प्रेम भक्ति, ये तीन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं 13 चैप्टर में। प्रेम नाम लेकर प्रेम भक्ति का आस्वादन करें। प्रेम नाम समझते हो ना, हरे कृष्ण को प्रेम नाम ही कहते हैं क्योंकि इससे प्रेम मिलता है। राम नाम को बोलते हैं, राम नाम को मोक्ष नाम बोलते हैं क्योंकि इससे मोक्ष मिलता है। राम नाम लेने से प्रेम नहीं मिलता, राम नाम लेने से मोक्ष मिल जाएगा आपको, प्रेम बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए रूपा को समय कह रहे हैं राम का नाम तारक है, तारक जो तार देता है। इसलिए काशी में शिव जी क्या बोलते हैं? राम नाम बोलते हैं ना, तारक। मगर कृष्ण नाम पारक है, मतलब मोक्ष देकर उससे परे भी प्रेम भी दे देता है कृष्ण नाम। इसलिए तीन राम का नाम एक कृष्ण के नाम की इक्वल है, ये तो कहते ही है ना, हजार नाम क्या है विष्णु सहस्र नाम तुल्यम, विष्णु सहस्र नाम तुल्यम राम नामे वरान्ने, शिव जी कह रहे हैं महाभारत में कि विष्णु के हजार नाम एक राम के नाम के इक्वल है, और राम राम रामे ती मनो रामे रमो रमे, तीन राम के नाम एक कृष्ण के नाम इक्वल है। क्योंकि विष्णु का नाम लेने से साधारण भक्ति आती है, राम का नाम लेने से मोक्ष और कृष्ण का नाम लेने से प्रेम इजीली मिल जाएगा आपको। सो महाप्रभु के हार्ट में इच्छा थी कि मैं कृष्ण नाम आस्वादन करूं, ये प्रेम है ना उसमें, कृष्ण नाम बोलते आपको प्रेम आएगा। आप देखो राम के भक्त, राम के भक्त क्या है, आप देखो आप राम का कीर्तन होता है, रामानंदी है संप्रदाय, वो बैठ के राम की पूजा करते हैं और सीरियस लोग होते हैं। कृष्ण के भक्तों को देखो, नाचते रहते हैं कूदते रहते हैं, नहीं वो सीरियस नहीं होते, नहीं होता ना, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। एक बार एक डिवोटी थे, पता नहीं कौन बता रहा था मुझे कि वो फॉरेन में गए किसी संस्था में, तो वहाँ पर वो सारे शिव के भक्त थे वो संस्था में ना, शिव जी की पूजा कर। सो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ तो बड़ी शांति है, मतलब क्या कितना अच्छा है। तो उन्होंने कहा हमारे इस्कॉन में तो बड़ी लड़ाई होती है, सब लड़ते ही रहते। तो जो तो उनके ओनर है ना, उन्होंने कहा वो तो बात सही है क्योंकि हम शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी तो शांत हैं, आप कृष्ण की उपासना करते हो, वो तो खेलते कूदते रहते हैं, पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसा स्वामी है वैसा सेवक होंगे। सो समथिंग इज लाइक दैट, बट एनी वे इट्स अ जोक। बट ये एक इच्छा थी महाप्रभु के हृदय में, उस प्रेम का आस्वादन करना, प्रेम नाम लेकर जो प्रेम राधा रानी अनुभव कर रही है उसको आस्वादन करना। बट कृष्णदास स्वामी लिख रहे हैं कि वो आस्वादन करना एक छल था, वो एक छल था क्या करने के लिए, प्रेम नाम का प्रचार करने के लिए। सो महाप्रभु खुद आस्वादन कर रहे हैं और उस आस्वादन करने के चक्कर में वो उन्होंने बांट दिया उसको। सो ही इज ट्रिकिंग पीपल, लोगों को लग रहा है कि वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, अपना आस्वादन कर रहे हैं, मगर एक्चुअली उस चक्कर में लोगों को आस्वादन करा दिया उन्होंने, कृष्णा के स्वामी लिख रहे हैं। सो महाप्रभु की मेन डिजायर ये थी कि वो सबसे हरिनाम कराए, बस हरिनाम बस होना चाहिए किसी भी तरीके से बस। तो उसके लिए वो फोकस उनका मिशन ही है। जैसे जब कृष्ण भगवान आए जब धराधाम पे, तो कृष्ण भगवान का क्या क्या मिशन था, एक इच्छा थी उनकी, क्या थी? एक्सटर्नली थी धर्म संस्थापना, अर्थ आया धर्म की संस्थापना करने, मगर एक इच्छा थी अपने भक्तों को आनंद। मैं कल बता रहा था नहीं, कृष्ण भगवान की एक इच्छा थी कि ये दिखाने संसार को कि मैं अपने भक्तों के वश में आ जाता हूं, ये दिखाना मैं भगवान हूं, अपने भक्तों के वश में आ जाऊंगा। और ये भागवतम में दिया है। और वो सारी क्रियाएं, सिर्फ आप पूरी व्रजलीला पढ़ो, हर क्रियाएं इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। सबनी यशोदा माँ भाग रही है, कृष्ण भाग रहे हैं, उन्होंने बांध दिया, क्या किया कृष्ण को यशोदा माँ ने, वश में तो कर लिया। रासलीला क्या है, पूरी है, यह गोपियां भगवान का डांस कर रही हैं, राधा रानी गुस्सा होकर चली गई, कृष्ण भगवान उनके पीछे पड़े हैं, क्या है? राधा रानी का पूरा, राधा रानी का पूरी लीला ही है, दिखा रही है कि कृष्ण उनके वश में है। यशोदा रमानंद बाबा, उनके साथ भी भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भगवान उनके वश में है। पूरा व्रज की लीलाएं यही है। तो एक एक इच्छा थी और वो पूरी कृष्ण भगवान पूरी कर रहे थे। ऐसी महाप्रभु के लीला में एक ही इच्छा थी उनकी कि सब हरे कृष्णा मंत्र लें। और महाप्रभु बहुत फोकस थे उस मिशन में। और उसके लिए क्या किया, उसके लिए जब महाप्रभु का जन्म हुआ जिस वक्त 500 साल पहले फाल्गुन पूर्णिमा पे, तो उस टाइम हमारे मंदिर का नाम क्या, किसी को पता है? चंद्रोदय, नहीं चंद्रोदय, चंद्रोदय, चंद्र मतलब मून, उदय मतलब उदय होना। सो जानबूझ के रखा है इसका नाम चंद्रोदय, क्योंकि महाप्रभु का जन्म कब हुआ? चंद्रोदय, इसलिए महाप्रभु को कहते हैं चैतन्य चंद्रोदय। चंद्र उदय होता है तो चैतन्य महाप्रभु का चंद्र उदय हो जाता है। मैं कृष्णा कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का चंद्र अकलंक चंद्र है। अकलंक, अलग अलंक मतलब इस पर कलंक, दाग नहीं है। मगर ये जो चांद है ये कैसा है? सकलंक। जब चैतन्य महाप्रभु का चंद्रोदय हुआ तो इस चांद पे ग्रहण लग गया, ये छुप गया। आज तो ग्रहण नहीं है, मगर उस टाइम ग्रहण लग गया। और ग्रहण की वजह से उस टाइम प्रथा थी कि जब ग्रहण लगेगा तो सब लोग गंगा जी में स्नान करने आते थे। ये लिखा है, सारे हिंदू सब गंगा जी में स्नान करने गए, और ग्रहण के सब जब स्नान कर रहे थे तो हरे कृष्णा बोल रहे थे। तो ये उसी महाप्रभु, एक्चुअली कृष्णा कृष्ण स्वामी लिख रहे हैं कि महाप्रभु ने अपने आविर्भाव से पहले नाम का आविर्भाव कराया। नाम, इसलिए आज जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ ना, अभी 5:30-6 बजे मतलब हमने मनाया, मगर एक्चुअली उससे पहले भगवान के नाम का आविर्भाव, तभी तो कीर्तन हो रहे थे। कीर्तन क्यों कर रहे हैं हम? कीर्तन कर ही इसलिए रहे हैं बताने के लिए कि पहले नाम आया और फिर चैतन्य महाप्रभु आया। चैतन्य महाप्रभु नाम का अनुसरण कर रहे हैं, नाम उनका अनुसरण नहीं कर रहा। ऐसे नहीं, वो नाम उनके पीछे चल रहा है, वो नाम के पीछे चल रहे हैं। उन्होंने हमेशा नाम को आगे रखा, वो उनका मिशन है। सो सबके साथ हरे कृष्णा बोलने लगे। मुस्लिम क्या कर रहे थे? मुस्लिम हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे थे, पता है क्यों? चिढ़ाने के लिए। वो ग्रहण की वजह से नहीं, वो चिढ़ा रहे थे, क्या बोल लो हरे कृष्णा, कुछ नहीं होगा इससे। तो सभी हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो सबने हरे कृष्णा बोला। तो महाप्रभु ने आविर्भाव से पहले सबसे हरे कृष्णा बुलवा दिया। अपना मिशन शुरू करने से पहले मिशन शुरू हो गया, ये चैतन्य महाप्रभु। यू सी कितने फोकस्ड हैं अपने, अगर ऐसे कहें कि मतलब अपने सर्विस में कितने फोकस्ड हैं भगवान, वो अपनी तरह से सेवा ही कर रहे हैं ना इस संसार की, लोक की। और फिर उसके बाद जब पैदा हुए चैतन्य महाप्रभु, तो वो हमेशा रोते ही जाते थे, और उनको चुप कराने के लिए क्या करते थे लोग? हरी हरे कृष्णा बोलते थे, तो तब वो चुप होते थे। इसलिए जो भी स्त्रियाँ आती थी तो उनको पहले ही बोलते थे, अभी रोएंगे तो हरे कृष्णा बोलना। तो उस टाइम भी वो छल से क्या करा रहे हैं लोगों से? हरे कृष्णा जप करा रहे हैं। इसलिए कुछ स्त्रियों ने उनका नाम गौर हरी रख दिया, क्योंकि थे गोरे और बार बार हरी बोलना पड़ता था, तो उन्होंने कहा भाई ये तो गौर हरी है, वहाँ से उनका नाम गौर हरी पड़ गया, जो हम बोलते हैं ना गौर हरी, वो गौर। तो गौरहरी महाप्रभु का बचपन का नाम है, और बचपन का एक और नाम था निमाए। और ये किसने रखा था नाम? मौसी। मौसी कौन है मुझे तो पता ही नहीं। किसने रखा निमाए नाम? महाप्रभु एक नाम निमाया था बचपन का। यस। अद्वैचार्य की वाइफ ने, अद्वैचार्य की पत्नी का नाम क्या था? सीता ठाकुरानी। तो वो सब आए यहाँ पर दर्शन करने, सीता ठाकुरानी, मालिनी देवी, श्रीवास ठाकुर की वाइफ, बच्चे हुए ना नया नया, सारे इन्फॉर्मेशन पहुंची, सब लोग आए तो उन्होंने देखा बड़े सुंदर लग रहे थे। तो उनका नाम पहले गौरहरी पड़ गया था, तो सीता ठाकुरानी ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे बच्चे मर चुके थे ना उनके पहले, तो उन्होंने कहा दोबारा कोई अनहोनी ना हो जाए, उसका नाम निमाया रख दिया, क्योंकि वो नीम नीम उस टाइम एक्चुअली एक प्रथा थी कि अगर नीम के पेड़ के नीचे बच्चे को रखोगे तो जो क्या कहते हैं इसकी पिशाची और डाकिनी शंखिनी नहीं होती है सारी, हाँ ईवल, ये बच्चे को मारेंगे नहीं। तो उन्होंने उस डर से रख दिया कि तुम हमेशा जीते रहो, और का नाम निमाया रखा, निमाया नीम से रखा, नीम से निमाया की कुछ उनका अपशगुन ना हो जाए। बचपन का नाम एक निमाया था, गौड़ हरी था, वैसे निमाया पंडित कहते थे उनको, और उन बाद में संन्यास के बाद उनका नाम पड़ा गौरंग महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु वो संन्यास के बाद पड़ा था। वो तो है ही, मतलब दो तीन नाम थे ना, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु, ये दो तीन नाम संन्यास के नाम थे, महाप्रभु के कई नाम थे बट नवदीप में कुछ लोग बोलते थे उसके बाद। सो पॉइंट ये था कि जब पैदा हुए स्त्री, तब भी हरिनाम करा रहे हैं, देख लो आप, बोलना पड़ रहा है, ही वॉज फोर्सिंग पीपल टू चैंट, बचपन से उनकी आदत है लोगों को फोर्स कर रहे हैं। यू सी प्रभुपाद कह रहे थे, प्रभुपाद ने तभी बोला था अमेरिका में कि जाके हरे कृष्णा कीर्तन करो, तो डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद हरे कृष्णा कीर्तन करने, फॉरन में तो लोग वो होते हैं ना, डिस्टर्ब होते हैं ना, पुलिस को भी बुला सकते हैं वहाँ पे, तो रुकवा सकते हैं, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हैरेस कृष्ण है, हरे कृष्णा नहीं है, हम लोग हैरेस करते हैं, लोग हैरेस समझते हो, हरास नहीं समझते, हरास समझते ना, हरास हाँ परेशान, तो हम लोग हरे कृष्णा नहीं है, हम लोग हरास कृष्ण है, हम लोगों को हरास करते हैं आके बुलवाओ, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा किया, रो ही नहीं रहे बचपन में, रोते जा रहे चुप ही नहीं हो रहे, हरास ही तो कर रहे हैं भैया, हरे कृष्णा नहीं बोलोगे तो चुप नहीं हो रहा मैं तो हरे कृष्णा बोलना पड़ रहा है लोगों को, हरास ही तो कर रहे हैं एक तरह से, तो फोर्स करवा रहे हैं चैंटिंग करने को। प्रभुपाद ने खुद ने बोला है अपने लेटर्स में कि मैंने, प्रभुपाद ने बोला मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि लोग फोर्स हो जाएंगे भगवान का नाम लेने के लिए, फोर्स हो जाएंगे। तो महाप्रभु इसी अपने मिशन में कितने एक्सपर्ट है महाप्रभु, और फिर जब धीरे धीरे महाप्रभु बड़े हुए तो 5 साल से उनकी एजुकेशन शुरू हुई, 5 ईयर्स के बाद, और फिर जब एजुकेशन शुरू हुई तो उन्होंने एजुकेशन ली, और फिर जब थोड़े सीख लिए तो वो बच्चों को पढ़ाते थे अपने घर में, उन्होंने स्कूल खोल लिया, और स्कूल में भी वो कृष्णा कर स्वामी लिख रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, सूत्र वृत्ति पंजी टीका, 4 चीज़ें होती हैं, तो कोई भी बुक लेते थे उसके सूत्र पढ़ते थे, उसकी टीकाएँ पढ़ते थे, उसकी वृत्ति पढ़ते थे, उसकी पंजी पढ़ते थे, ये पता है ना आप लोगों को, ये सब पता है नहीं, और सूत्र मतलब होता है जो सूत्र है उसके अंदर, हाँ सूत्र
था।
हाँ हाँ नहीं मतलब, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि हर किताब में ना सूत्र होते हैं एक
Contents.
हाँ मतलब हेडिंग्स और फिर उस सूत्र पे वो लिखी जाती है वृत्ति एक्सप्लेनेशन, और फिर उस वृत्ति पे एक लिखी जाती है पंजी, मतलब उसको अप्लाई कैसे करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और फिर उस पंजी पे लिखे आते हैं टीका नोट्स। तो हर आप कोई भी पढ़ोगे, आप व्याकरण पढ़ोगे पाणिनि के, उस पे वृत्ति है, पंजी है, टीकाएं हैं, ट्रेडिशनल सिस्टम यही होता है, ऐसे ही पढ़ा जाता है। भागवतम पे पढ़ लो आप, भागवतम पे जो टीकाएं हैं, वृत्तिकार होंगे मुझे पता नहीं, मगर टीकाएं हैं उस पे, नोट्स हैं, पंजी और वृत्तिकार नहीं है। सो वो सब पढ़ाते थे स्टूडेंट्स को, मगर जब पढ़ाते थे तो हर चीज को भगवान कृष्ण जोड़ देते थे। अगेन लोगों से क्या जप करा रहे, कृष्णा कृष्णा जप करा रहे, हर चीज को भगवान से कृष्ण से जोड़ के पढ़ाते थे, ये महाप्रभु की टेक्निक थी। सो हर कदम पे प्रभुपाद लिख रहे, चैतन्य चंद्रोदय, चैतन्य महाप्रभु को चांद से कंपेयर किया और कृष्ण भगवान को सूर्य से, कृष्णा सूर्य शाम, ऐसा क्यों है? क्योंकि चांद जो है वो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, ये तो पता है ना, रिफ्लेक्ट समझते हो ना, हिंदी मुझे नहीं पता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, तो चांद सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब है, नहीं रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रतिबिंबित कर रहे थे पूरे संसार में, इसलिए उनको चैतन्य चंद्र बोलते हैं, चैतन्य सूरज नहीं बोलते, ना चैतन्य सूरज ही बोल सकते हो, कृष्ण को सूरज बोलते हैं, चैतन्य को चंद्र बोलते हैं। सो ही वाज, तो इस तरह से वो अपने बच्चों को भी हरे कृष्ण करा रहे थे। और फिर थोड़े और बड़े हुए तो सारे डिवोटीज को लेके वो कीर्तन करने आते थे पूरे नवद्वीप में, कभी यहाँ पार्टी जा रही कभी वहाँ, और कीर्तन करके करके भी लोगों को हरे कृष्ण मंचप करा रहे। दैट वॉज हिज पॉलिसी। सो और ये प्रभुपाद पोपट में लिख रहे हैं कि हम लोग भी यही कर रहे हैं इस्कॉन में, हम लोग भी महाप्रभु के मूवमेंट को जो महाप्रभु ने किया हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला हम भी पूरे संसार में लोगों से हरे कृष्ण मंत्र जप करा रहे हैं बस, और उसके लिए टेक्निक्स बना रहे हैं हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग, गोविंदा रेस्टोरेंट, इतनी सारी टेक्निक्स हैं नहीं, मंदिर लोग आए और सबका एम है कि वो लोग क्या एंड में क्या बोले, हरे कृष्ण, दैट्स ऑल। वो महाप्रभु का मिशन है, तो हम महाप्रभु को इस मिशन में आज के दिन हम उनसे प्रे कर सकते हैं कि हमें भी शक्ति दें कि हम उनके मिशन में उनको उनकी हेल्प, यही तो भक्ति है उनकी हेल्प करना इस मिशन में। प्रभुपाद ने बोला भी है कि मायापुर में आओ, एनर्जी लो और वापस जाके प्रीचिंग करो जितना कर सकते हो अपनी सिचुएशन में। हर आदमी हर चीज़ तो नहीं कर सकता, जितना अपनी सिचुएशन में जिसको बता सकते हो बता दो, और अल्टीमेटली भगवान का नाम लेंगे तो उनकी लाइफ सक्सेसफुल है। सो यू कैन प्रे टुडे कि या तो भगवान आपको शक्ति दें या कुछ सिचुएशंस क्रिएट करें आपकी लाइफ में जिससे आपको भी भगवान के प्रचार का अवसर मिले। हर आदमी को अवसर नहीं मिलता प्रचार करने का, भक्ति करने का जरूर मिल जाएगा, अपना जप करने का, प्रीचिंग करने की अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिलती, वो तो चैतन्य महाप्रभु की स्पेशल कृपा होती है कि बिना किसी ऑब्स्टिकल के आप प्रचार कर रहे हो। कितना मुश्किल है नहीं इस संसार में, जो लोग भागवतम कह रहे भूरिदास है ना, गोपियां ऐसे लोगों की प्रशंसा कर रही हैं, राधा रानी प्रशंसा कर रही हैं कि जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग महान लोग हैं राधा। सो ये महाप्रभु का मिशन है और हम लोग यहाँ से ये लेके जा सकते हैं, अगर कुछ लेके जाना है यहाँ से तो ये लेके चले जाओ और क्या, बाकी तो ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। हाँ, हरे कृष्णा, चैतन्य महाप्रभु की
जय।
आप 13 चैप्टर पढ़ सकते हो चैतन्य चरिता का, अगर चैतन्यता है तो, वेरी नाइस, उसमें पोएम्स लिखी हैं कृष्णा केवल स्वामी ने, वेरी नाइस पोएम्स महाप्रभु के आविर्भाव की, यू कैन रीड टुडे। वैसे आज के दिन जब 505 साल पहले जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था तो कोई सोया नहीं था, सीरियसली, अद्वैचार्य नितिन प्रभु सब डांस कर रहे थे वहाँ शांतिपुर में, सॉरी हरिदास ठाकुर अद्वैचार्य सब डांस कर रहे हैं वहाँ। एक्चुअली हरिदास ठाकुर ने आके पूछा आपको क्या हो गया, तो आचार्य ने बोला कि महाप्रभु का भगवान कृष्ण का जन्म है, मुझे पता लग गया। सारे डिवोटी जो थे सबको पता लग गया था, अपने आप आए नहीं थे वो, न्यूज़ नहीं पहुँची थी, मगर हर एक को पता लग गया था कि कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया है। डिवोटी पूरी रात कीर्तन कर रहे हैं, दे वर एंजॉयिंग, दे कुडंट स्टॉप। अब आप लोग तो नहीं कर, अभी तो अभी थक रहे हो, बट जितनी चैंटिंग हो सके कर लो, देन यू कैन स्लीप। हरे कृष्णा, कुछ पूछना कुछ कहना है? हाँ, नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिए थे, मगर कृष्णा के स्वामी चैतन्य तो लिख नहीं रहे कि नीम के पेड़ के नीचे लिए, मेंशन नहीं है, तो इसलिए मुझे इस पे डाउट्स हैं कि कहीं मेंशन नहीं है नीम के पेड़ के नीचे लिए, ये लोकल प्रथा चल रही है। कृष्णा के स्वामी लिख रहे हैं कि बस इसलिए नेम किया था क्योंकि नीम भूतों को भगाता है, इसलिए कर दिया था। अब ये रिसर्च है, पता नहीं ये नीम का पेड़ क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं, पर योगपीठ पे देखना पड़ेगा। खराब खराब नाम, हाँ गुदड़ी, अच्छा
हमारे पढ़ाना जी का नाम था डोमन,
क्यों
वही पहले मर जाते थे,
अच्छा इसलिए ऐसे ही खराब नाम रख दिया,
अच्छा करके डोमन सिंह,
डोमन सिंह रहे। क्या क्या रखा नाम,
तो एक मेरे भाई के ससुराल में उनका दुखन,
दुखन नाम रख दिया, अच्छा हाँ ऐसे ही रखते थे, हाँ सही कह रहे। खुरहू ये यहाँ के बिहार है तो अजीब, एनीवे बुला रहे थे कि वो नाड़ा है, वो उनने मुझे बुलाया है और मुझसे मिलने नहीं आ रहा।
नाड़ा
नाड़ा मतलब बताया तो वो तो पास्ट टाइम है, वो तो ही वाज जस्ट दैट वाज अ डिफरेंट पास्ट टाइम दैट इज नॉट कंसर्न्ड विद नाउ। क्या कह रहे थे,
एक दिमाग में आ रहा है, और पिछले साल जो गए थे महाप्रभु 30-30 सेकंड के लिए दर्शन देते थे और दरवाजे बंद कर दिया जाता था,
वो श्रीवास ठाकुर के आंगन में,
श्रीवास ठाकुर आंगन, तो वही तो यहाँ नहीं।
अच्छा वहाँ कलना में, अभी कलना में,
हाँ थोड़ा सा
कुछ नहीं, वो तो ये था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु यहाँ पे पास में जगह अंबिका कलना, आप लोग तो नहीं जा पाओगे इस बार कहीं भी,
बहुत अच्छी जगह
था। मगर वहाँ पे, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु अद्वैत और चैतन्य महाप्रभु आए थे वहाँ, वहाँ पे उनके एक डिवोटी थे गौरीदास पंडित, वो वहाँ पे रहते थे और वो ध्यान में बैठे हुए थे और वो उन्होंने ध्यान लगाया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं भक्त हूँ तो भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे पास आएंगे, अगर नहीं हूँ तो मैं सुसाइड करके मर जाऊंगा, बस अगर भगवान ने दर्शन नहीं दिए थे उनका संग, वो ऐसे बैठे हुए थे वहाँ पे भी नीम का पेड़ है उसके नीचे। सो महाप्रभु तो वो तो भक्ति है, मतलब वो दर्शन करना आते हैं, उससे ज्यादा तो भगवान दर्शन करना आते हैं उनके, नहीं। सो महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो, एक दिन का वो वहाँ पे ध्यान में बैठे थे, यहाँ से दूर है और नवदीप महाप्रभु यहाँ पे बैठे थे, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु से कहा चलो चलते हैं, बोट पे बैठे, बोट चप्पा नहीं होता वो लेके वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने गौरीदास पंडित से कहा गौरीदास तुम प्रसाद बनाओ हमारे लिए, तो चप्पा भी था, अभी भी चप्पा है, बोर्ड जो महाप्रभु ने किया है वो वहाँ पे पड़ा है। गए आप अंबिका कलना, आप गए हैं प्रभु, नहीं गए? अच्छा, तो वहाँ महाप्रभु ने जो चप्पा है वो भी है, उसके दर्शन भी कराते हैं। सो लोग कहते हैं कि जो इस चप, जो इस चापे का दर्शन करेगा उसका भव सागर पार हो जाएगा, दैट्स वेरी नाइस। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा प्रसाद बनाओ, तो गौरीदास पंडित ने प्रसाद बनाया उन दोनों के लिए, तो उन्होंने खाया, तो उन्होंने कहा अब हम जा रहे हैं, तो गौरीदास पंडित ने कहा आपको जाने के लिए थोड़ा ना बुलाया था यहाँ पर, मैं ऐसे ही पागल की तरह ध्यान में बैठा हूँ इतने दिनों से, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाने दूंगा आपको। तो महाप्रभु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो महाप्रभु ने कहा आप क्या करें, वो रोने लगे गौरीदास पंडित, तो महाप्रभु ने कहा कि अब महाप्रभु ने डिवाइड कर लिया अपने आप को, दो महाप्रभु हो गए और दो नित्यानंद प्रभु डिवाइड हो गए, दो महाप्रभु दो नित्यानंद प्रभु, यू कैन इमेजिन। तो उन्होंने कहा चूज कर लो इन दो सेट में से, तो दो एक पेयर ये एक पेयर ये, तो गौरीदास ने कहा ठीक है मैं इस सेट को चूज करता हूँ, तो ऐसे ही सेट को चूज किया, दूसरा सेट जाने लगा और ये सेट डीटी बन गए, मूर्ति बन गए। गौरीदास पंडित ने कहा ये क्या है, तो मूर्ति बन गया, अरे आप रुको, आप मुझे लाइव लाइव को महाप्रभु चाहिए, मूर्ति नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो रुक गए, ये मूर्ति बन गए और ये उठ के मूर्ति बन के चले गए। तो ऐसे दो तीन बार उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे लाइव चाहिए। महाप्रभु ने कहा देखो भैया लाइव मैं नहीं रह सकता यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज हैं उनको भी दर्शन देने आने, सब ध्यान में बैठे हैं, तुम ही हो ना ध्यान में बैठे हो, तो तुम मूर्ति यहाँ पे रहेगी और साक्षात मैं ही हूँ। तो एक सेट चला गया, एक सेट मूर्ति बन गया, वो मूर्ति आज भी अंबिका कलना में साक्षात लाइव चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए आज भी आप जाओगे ना तो दर्शन करने, जैसे बाकी बहरे में नहीं होता बंद कर देते हैं बीच बीच में, तो आज भी वो 30 सेकंड के बाद बंद कर देते हैं, फिर खोलते हैं फिर बंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है फिर वहां से चले जाएंगे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अगर किसी में प्रेम होगा तो। सो लाइक दैट हृदय चैतन्य दास, उसके बाद और भी इंसिडेंट्स हुए थे तो इसलिए बंद कर देते हैं। सो ये स्टोरी है वहां की।
प्रभु जी आप बताएं,
तो फिर विश्रु 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 हाँ बड़े भाई, बड़े भाई थे ना विश्रु, हाँ, और फिर उसके बाद चैतन्य प्रभु विश्वंभर है,
चले गए संन्यास लेकर के,
हाँ विश्वरूप चले गए थे ना, विश्वरूप उनके उनके बड़े भाई, उनके बड़े भाई संन्यास ले लिया था उन्होंने, और संन्यास लेके वहाँ चले गए पंडरपुर, बाद में पता लगा, और पंडरपुर में उनका संन्यास हो गया था। और उनके संन्यास का नाम क्या पड़ा था किसी को पता है, ये क्या हो गया प्रभु, विश्वंभर किसका नाम है, उनके भाई के संन्यास का नाम, बड़े भाई के विश्वरूप का क्या पड़ा था किसी को पता है, प्राइज दूंगा मैं 1 करोड़ रुपए, बता दो जल्दी जल्दी। चलो अब किसी को नहीं मिलेगा प्राइज। तो उनके सन्यास का नाम पड़ा था शंकर अरण्य, जाके पढ़ो आप, शंकर अरण्य, अरण्य फॉरेस्ट, शंकर मतलब शिव। तो इस सन्यास का नाम पड़ता शंकर अरण्य। तो बाद में पता लगा कि पंडरपुर में उन्होंने सन्यास लिया था। और फिर उसके बाद उनके मम्मी पापा बहुत दुखी हो गए, नहीं एक बच्चे ने सन्यास ले लिया। तो जब महाप्रभु सन्यास लेने वाले थे तो उनको बहुत डर लग गया। ऐसे होता है ना, जब अपने बच्चे सन्यास लेते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, दूसरे बच्चे सन्यास लेते हैं तो बहुत महान है ये तो तब बहुत प्रेस करते हैं। जब अपने सन्यास लेते हैं तो भैया मेरा बच्चा भलाई बर्बाद हो रही है इसकी, इट्स अ डायलेमा। बटाला में ऐसा हुआ नहीं है, बटाला में एक पेरेंट मेरे पास आए तो कहते हैं हमारे बच्चा भक्ति कर रहा है, ये तो बहुत, ये तो हो सकता है सन्यास ले ले, डर गए वो। तो मैंने उनसे कहा ठीक है चलो, आप कह रहे हो कि बहुत भक्ति कर रहा है सन्यासी बन जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा सन्यासी बन जाएगा? तो कहते हैं नहीं नहीं कैसे, क्या है सन्यासी बन जाएगा फिर क्या होगा? तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी तो सन्यासी हूँ, तो मेरा क्यों आदर कर रहे हो? अगर आपको इतने बुरा लगता है सन्यास तो फिर मेरा भी आदर नहीं करना चाहिए, नहीं मेरा आदर कर रहे हो और अपने बच्चे की जब बात आई तो एक्चुअली दैट तो एनी वे सची माँ तो चलो वेल अभी पेरेंट्स का रोल प्ले कर रही हैं। एक बच्चा सन्यास हो गया और सची माँ ने एक्चुअली अद्वैताचार्य को क्रिटिसाइज भी किया था, अद्वैताचार्य की वजह से वो सन्यासी बने थे। किसी ना किसी का रोल होता ही है ना। तो अद्वैताचार्य ने वह घुट्टी मिलाई उनके बड़े भाई को कि तुम संसार में आके क्या करोगे, शादी वादी मत करो, फंस जाओगे। उनके दिमाग में फिट हो गया, वो सन्यासी बनकर निकल गए। तो सची माँ ने आके अद्वैताचार्य को बोला भी कि ये बूढ़ा जो है ने मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद कर दी, दिमाग आउट हो गया। किसी भी हो जाता है नहीं नॉर्मल लेडी की तरह। सो महाप्रभु जब आविर्भाव, महाप्रभु को बहुत गुस्सा है। महाप्रभु ने कहा महाप्रभु ने बोला कि मैं अपनी माँ को प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने वैश्य अपराध किया है। नहीं ये क्या ऐसे उल्टी फुल्टी बातें करी जा रही है कि बड़े भाई को सन्यासी बना दिया है, इतनी लाइफ वेस्ट कर दी। महापुर बहुत दुखी हो गए। महापुर ने कहा जब तक मेरी माँ माफ़ी नहीं मांगेगी अद्वैताचार्य से तब तक उसको प्रेम नहीं दूंगा क्योंकि वैष्णव अपराध सबसे सबसे खतरनाक चीज़ है। नहीं सो उनकी माँ ने माफ़ी मांगी तब जाके उनको मिला। फिर उसके बाद महापुरु ने संन्यास लिया। अपनी वाइफ को छोड़ दिया। उनकी वाइफ थी क्या थी, विष्णुप्रिया थी, लक्ष्मी विष्णुप्रिया ना बाद में दूसरी वाइफ। तो उनको और अपनी माँ को छोड़ के वो चले गए। उनके फादर नहीं थे, जगन्नाथ मिश्रा विष्णु का जब सन्यास हुआ था बड़े बड़े भाई का तो दुखी हो गए थे वो, उनके उन्होंने अपनी लाइफ छोड़ दी दुखी होकर। तो फिर उसके बाद जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो ये बहुत दुखी, उनकी वाइफ दुखी, उनके मदर दुखी हुई। तो महाप्रभु ने एक्सप्लेन किया कि देखो सिर्फ वही मेल मेंबर थे अर्निंग के, वही लेफ्ट। क्योंकि माँ ने कहा भी तुम चले जाओगे तो घर कैसे चलेगा, तुम्हारी पत्नी इतनी यंग, मैं मदर हूँ, फादर नहीं है। महापुरु ने कहा चिंता मत करो, सबका पालन भगवान कृष्ण करते हैं। सो आप इस पे विश्वास रखो, नाम लो और सब कुछ होगा। और उन्होंने सन्यास ले लिया। तो महापुरु ने अपने एक्शन से दिखाया, सिर्फ बोला नहीं एक्चुअली करके दिखाई, अपनी पूरी लाइफ उन्होंने भक्ति करके दिखाई कि भक्ति क्या होती है। भक्ति मतलब इस संसार से आसक्ति तोड़ के भगवान से आसक्ति भगवान से प्रेम करना। इसका मतलब ये नहीं कि सब अपना घर छोड़ दें, पॉइंट ये है कि अपने हृदय से भगवान से जुड़ना चाहिए। चाहे हम घर में हो, अटैच भगवान से होना चाहिए, घर वालों से ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। वो तो आप ऐसे ड्यूटी करते रहो, बट मन जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं वो, क्या था वो मगरमच्छ बंदर था ना, तो उसने अपना दिल कहाँ छोड़ गया था, पेड़ पे छोड़ के गया था ना। वैसे ही है, अपना हृदय, अपनी भावनाएं, अपनी आत्माएं मायापुर में छोड़ के चले जाओ घर वापस। यहाँ से वापस मत जाना, यहाँ पे छोड़ के चले जाना अपना दिल, यहाँ पे महाप्रभु के चरणों में छोड़ के फिर चले जाओ पंजाब दिल्ली, और तब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दिल्ली जाने
जाने का मन नहीं कर
रहा। मायापुर अच्छा है ना? फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो? फर्स्ट टाइम आए हो ना आप लोग? या दैट्स नाइस। ओके सो दैट्स अबाउट महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्णा।